ಸಿದ್ಧಿದೇವೇಭ್ಯಃ ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧಿಭ್ಯಃ ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧಿಭ್ಯಃ ಯಾರ್ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ प्रतिमा उनका निरूपण हो रहा है. आवाज बढ़ाए. सामायिक प्रतिमा का स्वरूप बदलाया गया. यह तीसरी प्रतिमा है. तीसरी प्रतिमा में श्रावक तीन बार सामायिक करेगा. तीनों बार की सामायिक में समता धारण करने का अभ्यास वह संस्कार आत्मा पर डालने का प्रयत्न करता है. दूसरी प्रतिमा में दो बार, तीसरी प्रतिमा में तीन बार. दूसरी प्रतिमा में सुबह शाम दो बार और तीसरी प्रतिमा में सुबह शाम और दोपहर में एक बार और सामायिक करता है. यहाँ सामायिक करने का तात्पर्य समता के अभ्यास से होता है. समता भाव धारण करने का अभ्यास करना है, इसलिए आरंभ सारंभ आदि क्रियाओं को सभी त्याग करके त्याग का संकल्प लेकर एक जगह बैठ जाना, आत्मचिंतन करना, शत्रु मित्र में, लाभ हानि में, जीवन मरण में समता धारण करना और आत्मचिंतन में रहना. बाहरी कोई भी सांसारिक विकल्पों को मन में नहीं लाने का नाम सामायिक प्रतिमा है. इस प्रतिमा के कारण से निर्विकल्पता बढ़ती है. श्रावक निर्विकल्प साधना की परिस्थिति में वह आनंद की अनुभूति करता है. यह आनंद की अनुभूति बढ़ती जाती है, उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है. दूसरी प्रतिमा से कहीं ज़्यादा तीसरी प्रतिमा में आनंद आने लगता है. तीसरी से कहीं ज़्यादा चौथी प्रतिमा में, चौथी से कहीं ज़्यादा पांचवी में, इस प्रकार से 11 प्रतिमाओं की सीढ़ियों पर वह निर्विकल्प होता जाता है. सांसारिक विकल्प कम करते जाने से आत्मा की अनुभूति भी बढ़ती जाती है. अभ्यास में ही आत्मा की अनुभूति है. आत्मा की अनुभूति की ओर बढ़ने वाला अभ्यास में ही आत्मा की अनुभूति का रसास्वादन लाभ लेने का प्रयत्न कर रहा है. यद्यपि फिल्टर प्योर नहीं हो रहा है, फिर भी आत्मा की ओर बढ़ते समय ही इतना आनंद है. तो आत्मा को उपलब्ध होने के बाद कितना आनंद होगा। ऐसी विशुद्धि, ऐसा आनंद पाने का यह एक रास्ता है, एक मार्ग है, जो कि श्रावक धर्म के रूप में 11 प्रतिमाओं के रूप में श्रावकों के लिए उपदेश दिया गया है। तीर्थंकरों ने बहुत बड़ा उपकार किया है। श्रावक ऐसा न समझे कि धर्म तो मुनियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है, हम संसारी हैं, संसारियों को धर्म होता नहीं, ऐसा न समझे। इसलिए 11 प्रतिमाओं का उपदेश हुआ है। इन 11 प्रतिमाओं में हम अभ्यासशील रहते हैं तो निश्चित रूप से संयम के प्रति अनुराग बना रहेगा, सम्यक दर्शन के प्रति, सम्यक ज्ञान के प्रति, आत्म तत्वों के चिंतन के प्रति बराबर हमारी आस्था बनी रहेगी, और धीरे धीरे कदम उठाते हुए इन 11 प्रतिमाओं के माध्यम से हमको जो आनंद और विशुद्धि मिलती है, उस विशुद्धि को अनुभव करते करते ही एक दिन संयमी बनेंगे। एक दिन पूरी तरह से 10 परिग्रहों को त्याग कर दिगंबर मुनि बनेंगे। इस प्रकार का ध्येय रख करके वह बढ़ता रहता है, उसी को हम नैष्टिक श्रावक कहते हैं। पाक्षिक श्रावक के पास 8 मूल गुण और एकमात्र सम्यक दर्शन, 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन और 8 मूल गुण होते हैं चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक के पास, इसलिए इनको पाक्षिक कहा। पाक्षिक क्यों कहा, धर्म के पक्ष में पहली बार आया इसलिए पाक्षिक। धर्म क्या है, अहिंसा ही धर्म है, संयम ही धर्म है, सम्यक ज्ञान ही धर्म है, सम्यक दर्शन ही धर्म है, रत्नत्रय स्वरूप धर्म मोक्ष मार्ग के पक्ष में पहली बार आकर के साधक बन गया, इसलिए उसका नाम क्या कहा, पाक्षिक श्रावक। धर्म के पक्ष में आने से पाक्षिक, और धर्म को निष्ठा के साथ पालन करते हुए पंच पापों को कम करने का संकल्प ले रहा है तो वह नैष्टिक, और उस नैष्टिक दशा में यदि वह संयमी नहीं बन पाया, मुनि बन नहीं पाया, और समाधि मरण उसी नैष्टिक अवस्था में करना पड़ रहा है तो अंत समय में वह मुनि नहीं बन पाता, तो उसको साधक श्रावक कहा। नैष्टिक के बाद साधक, साधक के उपरांत साधु ऐसा नहीं, नैष्टिक के उपरांत डायरेक्ट वह साधु अवस्था में पहुंच जाना चाहिए था। बीच में यह साधक अवस्था क्यों आ गई, क्योंकि संयम धारण करने की कहीं ना कहीं कमी रही, कोई शक्ति नहीं रही, कोई विघ्न रहा, शारीरिक परिस्थितियां साथ नहीं दी, तो वह संयम धारण करने में सक्षम नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में उसको साधक श्रावक बनने का भी उपदेश दिया गया है। इस प्रकार से श्रावक धर्म 3 स्टेज पर है, पाक्षिक श्रावक, नैष्टिक श्रावक, और मुनि नहीं बन पाए तो साधक श्रावक, यदि मुनि बन गए तो असली श्रावक, साधक, असली साधक बनेगा, और संयम को धारण करके जीवन भर संयम का वह निर्दोष पालन करेगा, और अंत समय में पंडित मरण को साधेगा। पंचम गुण स्थान में साधक श्रावक बनकर यदि मरण हुआ तो बाल पंडित मरण को साध लेगा, और इससे ऊंचा मरण पंडित मरण है, जो कि समस्त परिग्रहों से रहित निर्विकल्प एकाकी दिगंबर स्वतंत्र निष्प्रह निर्लेप वीतरागता जहां झलकती है, वहां पर जाकर के मरण करना कितना बड़ा भाग्य चाहिए, यह हर किसी को नहीं मिलता। सारे संसारी प्राणी मरण कर रहे हैं, लेकिन पंडित मरण करने वाले कितने जीव हैं, बिरले हैं। बाल पंडित मरण करने वाले कितने जीव हैं, बहुत कम। बाल मरण करने वाले पाक्षिक श्रावक भी बन करके मरण कर ले तो ऐसे भी कितने जीव हैं, वो भी कम हैं। और सामान्य मरण करने वाले संसार शरीर भोग में लिप्त रहकर संसार सुख भोग कर अंत में मरना पड़ रहा है, भोगों को छोड़कर छोड़ना तो नहीं चाहते लेकिन छोड़कर मरण करना पड़ रहा है, मर रहे हैं, ऐसे कितने जीव हैं। संसार पूरा उन्हीं से भरा है, उन्हीं जीवों से भरा है। ये प्रतिमाएं वैराग्य को प्रदान करती हैं, साधक में वैराग्य को स्थिर बनाए रखने के लिए, साधक को परिग्रह और पापों की भूमिका से ऊपर उठने के लिए ये हमारे लिए बहुत शिक्षा देती है। इसमें पांच अनुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत, इन 12 व्रतों का आपने स्वरूप सुना। अब आप सामायिक प्रतिमा का स्वरूप सुन रहे थे कल, कल बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि सामायिक कैसा करना चाहिए। आज अगली प्रतिमा उनका स्वरूप समझेंगे, कौन सा? प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास प्रतिमा यह चौथी प्रतिमा कहलाती है, चौथी सीढ़ी है। दो प्रतिमा अगर धारण करते हैं तो सामायिक तीन बार करने की कोई जरूरत नहीं, दो बार किया जाता है, क्योंकि शिक्षा व्रत में सामायिक शिक्षा व्रत भी है। शिक्षा व्रत जो चार थे उसमें सामायिक था क्या? नहीं। उसमें कितने बार सामायिक करना? दो बार, केवल दो बार, सुबह शाम 47 मिनट निकालो, दो बार सामायिक करो। जीवन को इतना व्यस्त नहीं रखना, क्योंकि आप प्रतिमाधारी बन गए। जीवन को इतना लिप्त नहीं रखना, क्योंकि अब हम व्रति बन गए। ढीला छोड़ना, परिग्रह तो 24 घंटे करिए तो भी कम है। परिग्रह का काम रात दिन चलता रहता है, सपने में भी आते हैं तो कम लगता है परिग्रह का, वहाँ जाना है, ये जाना है, स्वप्न में भी प्लानिंग होता रहता है। लेकिन ऐसा कभी स्वप्न आया जैसे प्लानिंग स्वप्न में भी होता रहा कि ऐसा मकान बनाना, ऐसा बिल्डिंग करना, ऐसा कार गाड़ी लेना और ऐसा पार्किंग रहना वहाँ पर ये सभी स्वप्न में कई बार आए होंगे, आते हैं कि नहीं? संसार के जब भी स्वप्न आते हैं, संसार के ही स्वप्न आते हैं। लेकिन ऐसे कितने स्वप्न आए, हमने प्रतिमा लिया है, सामायिक कर रहा हूँ और विशुद्धि बढ़ रही है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, एक बार भी स्वप्न आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया ये? क्योंकि हमने संस्कार डाला ही नहीं कभी, और संस्कार के लिए आप आसक्त हो जाते हैं तो ऐसे स्वप्न भी आने लगते हैं, मैं कब प्रतिमा ले लूं। देखो ऐसे कई बार होता है, आप चौका लगा रहे हैं। और मुनि महाराज का आहार 4 दिन तक नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन के स्वप्न में तो हो ही जाएगा होता है कि नहीं पड़गान? क्योंकि आप रात दिन यानी 4 ही दिन में, जिस दिन से शुरू किया है वहां से लेकर 4 ही दिन में निरंतर उसका विचार, निरंतर उसका विचार में रहते हैं कि महाराज का आहार हो, और नहीं हुआ, 4 दिन तक नहीं हुआ तो 5वें दिन स्वप्न आया। स्वप्न आया, ये स्वप्न क्यों आया? संस्कार से तो आया, 4 दिन के संस्कार 5वें दिन में सफल हो गए स्वप्न में, और स्वप्न में आहार दिया तो क्या पुण्य नहीं लग रहा है? स्वप्न में, सपने में भी पुण्य लग रहा है, और सपने में किसको पुण्य लग रहा है, किसमें लग रहा है? सपने में पुण्य अपने में लग रहा है, सपने में अपने में पुण्य लग रहा है। संस्कार चाहिए, संस्कार के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, और संस्कार पाने के लिए आसक्त जीवन बनाना चाहिए, व्रतों के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठा के भाव जगाकर उसका पालन हम करते रहेंगे तो अवश्य आत्म संस्कार बढ़ता जाएगा और यह लिप्त परिग्रह अलिप्त होता जाएगा। हम आत्म तत्व को भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिग्रह से लिप्त हैं इसलिए। एक ही कारण, एक तरफ परिग्रह, एक तरफ धर्म। धर्म का विरोध परिग्रह करता है और परिग्रह का विरोध धर्म करता है। आत्मा जिस तरफ परसेंटेज के अनुसार, जिस तरफ जितना परसेंटेज से आसक्त रहेगा उसके संस्कार पड़ेंगे और वो सपने में भी आएगा। जिस तरफ जितना परसेंटेज के रूप में, जितनी परसेंटेज के रूप में आसक्त है आत्मा, वह सपने में आएगा। आसक्ति काम करती है। परिग्रह आपके पास कितना भी हो, उसके परसेंटेज से कोई महत्व नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। आप चक्रवर्ती हैं क्या, करोड़पति हैं क्या, सेठ हैं क्या, साहूकार हैं, इसका महत्व नहीं। आप उस परिग्रह के प्रति कितने आसक्त हैं, इसका महत्व है। आसक्त परिग्रह में है तो परिग्रह के सपने आएंगे, आसक्त आत्मा के प्रति हैं तो चक्रवर्ती बनने के बाद भी इतना विशाल परिग्रह छाया हुआ है चारों ओर, उतना होने के बाद भी धर्म के ही स्वप्न आएंगे। ऐसा होता है। कई दिन तक समय शिखर नहीं गए थे, लेकिन जाएं जाएं जाएं, ऐसा 4 साल से आप सोच रहे हैं, तो 4 साल के बीच में समय शिखर गए हुए स्वप्न कितने बार आ सकते हैं? बहुत बार आते हैं, बहुत बार आते हैं। श्रवण बेलगोल के बाहुबली भगवान को जिसने कभी नहीं देखा, चित्र में देखा है, केवल चित्र में देखा है, लेकिन चित्र में देखने के बाद एक बार अवश्य साक्षात दर्शन करूं, इस प्रकार के भाव से वह सोच रहा है कब जाऊं कब जाऊं, और जा नहीं पाया 1.5 साल तक। 1.5 साल तक जा नहीं पाया। 1.5 साल के बीच में वही मूर्ति सपने में कई बार आ सकती है। क्षेत्र नहीं आएगा, क्योंकि क्षेत्र देखा नहीं इसलिए आ नहीं सकता। जो आप देखते हैं वो सपने में अवश्य आता है। भगवान के प्रति आसक्ति है तो भगवान स्वयं आकर दर्शन देते हैं। भगवान भी बहुत दयालु हैं, और भगवान के प्रति आसक्ति हमारी नहीं है तो भगवान भी नहीं आते। हमारे प्रति भगवान भी आसक्त नहीं है। भगवान भी भक्त के, क्या बोलते हैं ना वो, क्या बोलते, भगवान भी भक्त के अधीनता में आते हैं। भगवान भक्त के अधीन है, किंतु कब? जब भक्त भगवान के अधीन में है तो भगवान भी भक्त के अधीन। हम भगवान के अधीनता में नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं, तो भगवान भी हमारे सपने में नहीं आते। हम भगवान को बार बार याद करते हैं तो भगवान भी हमारे सपने में अवश्य आएंगे, आते ही हैं। भगवान भी तो देखते हैं कि कितने आसक्ति के साथ, कितनी आसक्ति के साथ हमको ये स्मरण कर रहा है कि एक बार इसके सपने में अवश्य जाना चाहिए। आते ही हैं, सपने में आते हैं। ऐसे स्वप्न हमारी निद्रा भी पुण्यबंध का कारण बन जाता है। जो भव्यात्मा निद्रा के अंदर भी धर्म कर रहा है, धर्म से आसक्त है, विशुद्ध परिणामों को धारण कर रहा है, अवश्य सामायिक करने के भी सपने आ सकते हैं। सपने में आप सामायिक कर रहे हैं, सपने में आप आत्मचिंतन कर रहे हैं, सपने में आप शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर से भिन्न आत्मा की अनुभूति करने का प्रयत्न चल रहा है, ऐसे सपने आपको आ सकते हैं, लेकिन कब? उस सामायिक आदि के प्रति सतत जीते जागते चलते फिरते सतत समय पर, समय आने पर ही सामायिक करें ऐसा नहीं, चलते फिरते भी आत्मा का ध्यान रहना चाहिए। राग द्वेष मुक्त आत्मा मैं हूँ, राग द्वेष मुक्त आत्मा मैं हूँ, चलते फिरते भी आत्मा को देखना चाहिए, तो ये संस्कार मजबूत होते हैं। संस्कार जब मजबूत होते हैं तो स्वप्न में भी यही आएगा, मैं चल रहा हूँ लेकिन आत्मा अलग है और शरीर अलग है, आत्मा अलग है शरीर अलग है, ये भेद भेद भिन्नता की अनुभूति करना ये तो सामायिक है, जिसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, विकल्प नहीं, आत्मा आत्मा के प्रति आसक्त है, बाह्य रागादि भाव, बाह्य विकल्पों के प्रति, परिग्रहों के प्रति अनासक्त है, ऐसे सपने अवश्य आ सकते हैं, किंतु यह अभ्यास चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल है। आप ये मत समझो कि हम श्रावक हैं तो हमेशा हमको उलझ के रहना पड़ता है, जहां उलझते हैं वहां आत्मा को भी बार बार स्पर्शित करना। आप गाड़ी पर जा रहे हैं फिर भी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ऐसा चिंतन करो, क्या ये चिंतन भी नहीं हो सकता? ये बार बार ध्यान में आते जाते रहना चाहिए, ये बार 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 बार, तो आपकी प्रतिमा सफल होंगी। यानी टोटली बात यह है कि आत्मा के प्रति आसक्ति बढ़ती जाए और संसार के प्रति अनासक्ति होती जाए, तो इन प्रतिमाओं के माध्यम से आप असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा करते हुए आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्रतिमाएं केवल ले लिया और द्रव्य रूप से पालन करने के लिए नहीं होते, महाव्रत भी ले लिया और द्रव्य रूप से पालन करते हुए जा रहे हैं इसके लिए नहीं होते, आत्म संस्कारों को बलवती बनाने के लिए ये व्रत होते। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ये जीते जागते प्रति समय चिंतन चलते रहना चाहिए, इससे अनासक्ति बढ़ती है, राग द्वेष कम होते हैं, विकल्प कम होते हैं। यही कठिन है, बाकी तो सब सरल है। मुनि महाराजों को क्या कठिन है? अंतिम आप कह सकते हैं मुनि महाराजों को केश लोच बहुत कठिन है, इसलिए हम दीक्षा नहीं ले पा रहे। मुनि बनने के बाद केश लोच कैसे करें? केश लोच बिल्कुल कठिन नहीं। मुनि बनने के बाद उपवास करना बहुत कठिन है, उपवास भी कठिन नहीं है, क्योंकि उपवास शरीर के लिए दिया जाता है। मुनि बनने के बाद कठिन क्या है फिर? चल पैदल चलना कठिन है, पांव थकते हैं, छिलते हैं, तब भी चलते रहते हैं। नहीं, मुनि बनने के बाद उपसर्ग सहन करना बहुत कठिन है, समता भाव रखना बहुत कठिन है। नहीं, वो भी कठिन नहीं है। कठिन क्या है? जीते जागते आत्मा का ध्यान करना बहुत कठिन, हमेशा उसको याद रखना, हमेशा दो मिनट के बाद एक बार स्पर्श करने का संकल्प लो कि मैं आत्मा हूं, कहां जा रहा हूं, आहार कराने के लिए जा रहा हूं, शरीर को आहार कराने के लिए जा रहा हूं, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए जा रहा हूं। क्यों? तुम आहार नहीं करने के लिए जा रहे हैं? मुझे आहार करने की जरूरत ही नहीं, आहार में कोई रस नहीं, आहार में कोई इंटरेस्ट नहीं, अनासक्त भाव, आहार में भी अनासक्ति, शरीर में भी अनासक्ति, शरीर को खिलाना पड़ रहा है, ऐसे परिणाम सतत जीते जागते जीवित रहना चाहिए। श्रावक को भी ऐसा ही, खा रहे हैं तो खाने में मजा नहीं आना चाहिए, खाना पड़ रहा है ऐसा लगना चाहिए। ऐसा लगता है? ऐसा लगता है क्या? और लगना चाहिए, अभ्यास करेंगे तो लगेगा। वो भी जब आत्मा से आसक्ति बढ़ेगी तब ये सब अनासक्ति की कोटि में आएंगे, तो ये ऑटोमेटिक नीरस लगेंगे। आप शरीर रूपी आश्रम में हैं, शरीर आश्रम है, यही उदासीन आश्रम। उदासीन आश्रम कहां, बाहर नहीं है। उदासीन आश्रम में गए, जिस पर लिखा है उदासीन आश्रम इंदौर, वहां आश्रम में जाने मात्र से आप उदासीन नहीं हो सकते। उस वह आश्रम भी उदासीन हो जाए आपके लिए, इसलिए गए हैं। वही आश्रम उदासीन नहीं, बल्कि शरीर भी उदासीन हो जाना चाहिए, तो हम असली उदासीन आश्रम में हैं। असली उदासीन आश्रम तो शरीर है, यहां उदासीनता है तो किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं, घर ही आश्रम बन गया। जिस घर में आप रहते हैं आसक्ति से मत रहो, घर को देख करके खुश मत हो, मैंने इतना बिल्डिंग अच्छा बनाया, आनंदित मत होना। ये परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है। बिल्डिंग को अच्छा बना है तो उसको देख करके खुशी हो रही है अंदर में, ये कौन सा ध्यान? परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है वो। श्रावक के लिए कैसा रहना चाहिए सिखाया है तीर्थंकरों ने, आत्मकल्याण करना हो कैसा रहना चाहिए। 24 घंटे में कभी भी मरण आ जाए, ऑलवेज वेलकम, हम तैयार हैं। चलते फिरते भी मरण आ जाए, बिल्डिंग के बारे में सोच रहे थे, क्या बिल्डिंग हमने बनाया, इसकी सुंदरता में हम डूब रहे थे, लेकिन इतना सुंदर बनाने के बाद भी हम अब आज इसमें नहीं डूब रहे हैं। बिल्डिंग अलग है, आत्मा अलग है, बिल्डिंग अलग है, शरीर अलग है, ये तो उपभोग वस्तु है। बिल्डिंग क्या उपभोग वस्तु है ना, जिसको बार बार में उपयोग में लेते हैं, रोज वही तो बिल्डिंग रहता है, ये उपभोग वस्तु है। ये उपभोग वस्तु बिल्डिंग कितनी भी सुंदर हो, कितना भी मजबूत हो, हमने बना तो लिया, लेकिन आसक्ति क्यों मुझे इसलिए इसके प्रति? मैं इसमें आसक्त नहीं रहूंगा, मैं अपनी आत्मा से आसक्त रहूंगा। आसक्ति एक कषाय है। कषाय कब? यदि हम बिल्डिंग के प्रति, यदि हम शरीर के प्रति, यदि हम बाह्य वस्तुओं के प्रति, परिवार के प्रति, चेतन अचेतन वस्तुओं के प्रति यदि आसक्ति कर रहे हैं तो एक कषाय कहलाती है। किंतु यही आसक्ति इधर लगाया जाए, अंतरंग की ओर, अंतर्दृष्टि बना करके अंतरंग की ओर, आत्मा की ओर लग जाए आसक्ति, तो ये वीतरागता कहलाती है। नाम वही है, आसक्ति। लेकिन इस आसक्ति को उठाकर हमने आत्मा पर स्थापित कर दिया तो वीतराग बन गया। आसक्ति को नहीं हटाना है, आसक्ति तो हमेशा रखना है, लेकिन किस में, ये विवेक रखना है, बाह्य परिग्रहों के प्रति या आत्मा के प्रति, किस में आसक्ति रखना है? आत्मा के प्रति। आत्मा का चिंतन करो, वो हम हैं, हमें हमारी चिंतन करना चाहिए, हमारा चिंतन होना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हमको अपने को बनाना है, हमने अभी तक किसको बनाया? पर को बनाया, बिल्डिंग को बनाया, बिल्डिंग पर। परिवार को बनाया, परिवार पर। गाड़ी को बनाया, गाड़ी पर। गाड़ी को सुधारा, गाड़ी पर। जो जो करते हैं सब पर का काम ही करते हैं। और पर का काम करते समय, करने से पहले प्रभाव के बिना पर काम नहीं कर सकते। प्रभाव उत्पन्न हुए बिना पर का काम नहीं हो सकता। इसलिए स्वभाव को करो, स्वभाव में रहो। स्वभावों को करो हमेशा, यानी आत्मा के प्रति भाव। जितना समय तक आत्मा के प्रति भाव करेंगे वह स्वभाव है, और स्वभाव को करते करते यदि स्वभाव में डूबेंगे तो वह स्वभाव की अनुभूति है। कितना अच्छा आज समझ में आ रहा है। और जीवन बन गया हमारा, इतनी बड़ी सिटी में रहकर, कोल्हापुर में रहकर, भीड़ में रहकर हम भेड़ नहीं बने, भीड़ में रहकर भेड़ नहीं बने। देखो, एक भेड़ इधर चला गया तो हजारों भेड़ उधर ही चले जाते हैं, लेकिन हजारों लाखों भेड़ जाने पर भी एक भेड़ नहीं जा रहा है तो वो भेड़ नहीं है। वो भेड़ भीड़ में नहीं जाना चाहता। कितना महत्वपूर्ण है वह जीव, कितना महत्वपूर्ण है। क्या सोच रहा होगा, सभी चक्र चले गया और अकेला रह गया, वो जाना नहीं चाहता उनके साथ। तो कुछ तो है अंतरंग में, कुछ तो घटना घट रही है, तभी तो नहीं गया वो। ये 27 लोग ही 30 हो गए बताते हैं। 27 लोगों को आत्मा के प्रति आसक्ति जाग गई, ये पूरी सिटी को क्यों नहीं जागती? 10 लाख लोग होंगे, ये सब आत्मा को भूले हुए हैं, खुद को भूले हैं, पर को पकड़े हैं, पर के पीछे लगे हैं। और पर कभी, पर को कभी हम अपना बना नहीं सकते। अपना बना करके हम परगति में ले जा नहीं सकते। बिल्डिंग अपना ठीक है, जब तक अपना बना रहे थे बना लिया, बिल्डिंग हो गया ना, खरीद लिया ना जगह, बिल्डिंग बन गया ना, आपका हो गया ना, हाँ हमारा हो गया, फिर क्या करना है? अब इस बिल्डिंग में चिपक कर वहीं मरना है? क्या करना है? जड़ वस्तु को तुमने जुटा लिया, और ये जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु में रहकर जड़ वस्तु से मैं भिन्न हूं ऐसा आत्म तत्व का चिंतन करके, आत्मा का चिंतन करते करते मरण करो। ठीक है, जीवन जीने के लिए एक मकान चाहिए था, मकान बना लिया। जीवन यापन के लिए एक दुकान चाहिए थी, दुकान भी बना लिया। पर ये सब किस लिए? आत्मसिद्धि के लिए कारण बने। आत्मा को पाना है, आत्मा में रहकर आत्मा का धर्म निर्वाह करना है, इस धर्म निर्वाह के लिए ये साधन बने। आत्मा को ही इसमें लगाओ ये ठीक नहीं, आत्मा के लिए इनको लगाओ। मैं दुकान जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं? आत्मसिद्धि के लिए, धर्म रक्षा के लिए। मेरे जीवन का एक साधन है, मैं कमाता हूँ, और कमा करके शरीर को रखना पड़ता है, तो शरीर के लिए दुकान है, और शरीर और दुकान, ये दोनों किसके लिए हो, किसके लिए हो? आत्मा के लिए हो, धर्म के लिए हो। धन धर्म के लिए मिलता है आर्यखंड में। हे आर्यखंड के भव्य जीवों सुनो, धन जो मिला पुण्य के उदय से, आपने जो कमाया, यह धन धर्म के लिए मिला है या धन के लिए ही हम मिले हैं? धन ने हमको खरीदा, ये अच्छा है क्या? धन को ही हमने अपने काबू में रखा धर्म के लिए, ये अच्छा है कि वो अच्छा है? ये अच्छा। सदा भेद विज्ञान से जीना है, प्रतिमा धारण करके। भेद विज्ञान का यही अर्थ है, मैं आत्मा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ, एक धर्मात्मा हूँ। धन मेरे लिए साधन है, दुकान मेरे लिए साधन है, इनमें मुझे दोनों में आसक्ति नहीं, धर्म में आसक्ति है। उस आसक्ति की पूर्ति के लिए, जीवन यापन के लिए ये धन और ये परिवार है, इसको मैं काम में ले रहा हूँ। इस प्रकार से चिंतन करते हुए यदि व्रतों का पालन हुआ तो मैं लिखित रूप से गारंटी देता हूँ कि आपके 3 भव या 8 भव निश्चित रहेंगे। पंचम गुणस्थान में मरण होगा, बाल पंडित मरण होगा, और निश्चित रूप से 8वें भव के अंदर अंदर आप सिद्ध परमिष्टि के रूप में सिद्धालय में दिखाई देंगे। बस इससे बढ़कर के क्या चाहिए? यही जीवन है। आर्यखंड इसी साधना के लिए मिला हुआ है। आर्यखंड में जन्म लेने वाले हम लोगों का नाम आर्य है, ऐसा नहीं मिलेच्छ तो नहीं है हम। मिलेच्छ यानी आत्मा को भूले हुए लोग, जहां आत्मा परमात्मा और मोक्ष की बातें नहीं चलती, उसका नाम मिलेच्छ खंड, जहां इसका उपदेश नहीं होता। जन्मते हैं, शरीर पाते हैं, शरीर भोग भोगते हैं, शरीर को भी भोगों में लगाते हैं, धन को भी भोगों में लगाते हैं, मरण करते हैं, और जहाँ से आए थे वहीं पुनः चले जाते हैं। यदि नरक में आए, नरक से आए हों तो नरक में, तिरंच गति से आए हों तो तिरंच गति। चतुर्गति का भ्रमण यह रुकता नहीं, चालू ही रहता है। और ऐसी यह आत्मा हमारी अनादिकाल से चतुर्गति में भटकते 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 कितने भव व्यतीत किए हैं, अनंत भव। अपना कल्याण, अपना काम किया ही नहीं, स्वयं का काम तो किया नहीं, पर का काम में तो आसक्त हो करके उनको संपन्न किया है। जिंदगी में कुछ नहीं, पहले जैसे थे वैसे ही रहना है, लेकिन दृष्टि को बदल करके रहना है। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। जिस दृष्टि में निर्माण होने की शक्ति है, उस दृष्टि को बनाना है, और जिस दृष्टि से विनाश होने की शक्ति है, उस दृष्टि को त्यागना है, उसको बदलकर निर्माण की दृष्टि बनाना है। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल गई तो आत्मा परमात्मा बन गया। हमारी दृष्टि हमारी आत्मा को परमात्मा भी बना सकती है, और हमारी दृष्टि हमारी आत्मा को संसारी भी बना सकती है। जीवन जीना ही है, जहां जी रहे हैं वहीं जीना है, किंतु कैसे जीना है सोच करके जीना है, विवेक के साथ जीना है। बहुतों के बीच में रहकर, अपने को भूलकर, उनके जैसे रहकर, उनके जैसे चलकर जीवन को समाप्त नहीं करना है। उनको तो कुछ भी मालूम नहीं है, अज्ञानी है, आत्मा अनात्मा को वे जानते ही नहीं, और हमें उनके बीच में रहना पड़ता है, तो कैसे रहो? जैसे खदान में रत्न रहता है अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं, जैसे खदान में सोना रहता है अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं, खदान में रहता है, ढेर सारे चारों ओर पत्थर होने के बाद भी सोना पत्थर नहीं बनता, ढेर सारे आसपास में पत्थर होने के बाद भी वह हीरा पाषाण नहीं बनता। धर्मात्मा को जीवन जीने की कला ये है कि कैसे रहना चाहिए पर के बीच में जाकर के, जैसे अभी परिणाम है वैसे ही वहां भी होना चाहिए, तब आप असली रत्न हैं। है ही रत्न, असली रत्न है, लेकिन जरा से हमारी दृष्टि बदलती है तो हम रत्न पाषाण बनने लगते हैं, वहां हम रत्न पाषाण बनने लगते हैं, और दृष्टि को हमने स्थिरता प्रदान कर दी तो यहां रहे तो भी वही परिणाम, और संसार के बीच में रहे तो भी वही परिणाम, इस प्रकार से हम रह सकते हैं। पर दृष्टि की स्थिरता को बनाए रखना चाहिए, जैसी दृष्टि यहां थी, जैसे भाव यहां थे प्रवचन के काल में, वैसे ही भाव उस सब के बीच में जाने के बाद भी मैं इनके बीच में आया हूं, मैं आत्मा हूं, ये सभी पर हैं, मैं अलग हूं ये अलग हैं, मैं धर्म करना जानता हूं, ये कोई भी इसमें से एक भी धर्म करना नहीं जानता, मैं अपने को जानता हूं यही मेरा धर्म है, इसको मैं ही कर सकता हूं क्योंकि मुझे आत्मा और पराया का ज्ञान है, इनको आत्मा पराया का ज्ञान नहीं है, मैं इनके बीच में आया हूं, देख रहा हूं ये कितने आसक्त हैं, डूब गए हैं, स्वयं को भूल कर डूब गए हैं, ये भी रत्न है लेकिन पाषाण बन रहे हैं, लेकिन मैं रत्न होकर के भी पाषाण नहीं बन पा रहा क्योंकि मैं जागृत हूं, दृष्टि मेरी जागृत दृष्टि है, इसलिए मैं रत्न रत्न ही हूं, पाषाण नहीं बनता। इस प्रकार का चिंतन सतत चलना चाहिए, 2 मिनट में एक बार आते जाते रहना चाहिए वो चिंतन, तो हमारा जीवन मुनि जीवन हो या श्रावक जीवन हो सफल बनता ही है, गारंटी। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने के उपरांत उन्होंने मौन धारण किया, किसी से बोले ही नहीं हुए, क्यों? अधिक से अधिक आत्म साधना तो मौन रहने से ही हो सकती, मौन रहना हमको कठिन लगता है लेकिन ये कठिन नहीं है, जब हम मौन हो जाते हैं, पर को पर समझते हैं और अपने को अपना समझते हैं, तो अपना अपने को अपना जिसको समझ में आ गया है ना, मौन भी सरल हो जाता है, कठिन नहीं पड़ता। और जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं, मौन बहुत कठिन पड़ेगा, क्योंकि सब में घुलमिल करके रहने का उनको अभ्यास है, तो वही चाहता है, और घुलमिल करके रहना और मौन भी रहना दोनों एक साथ बातें कैसी हो सकती। जो अपनी आत्मा में रहता है और सबके बीच में रहता है तो भी वह मौन को निर्दोष निर्वाह करता है, निर्दोष ये साधना हो सकती है, किंतु कब? पहला अभ्यास करो, सबके बीच में रहते हुए भी मैं अलग हूं ये प्रति समय जीवित रहना चाहिए विचार, मैं अलग हूं ये अलग है, मैं अलग हूं ये अलग है, मैं आत्मा हूं, ये सभी संबंधी हैं, ये परजीव हैं, मैं स्व आत्मा हूं, मैं अपने में जागृत हूं, ये जागृत नहीं है। आप अपने को कभी ऐसा महसूस किया है कि बहुत भीड़ में थे और हम आत्मचिंतन में थे उस वक्त, मैं अलग हूं ये भीड़ अलग है, मैं अलग हूं ये भीड़ अलग हूं, कभी चिंतन किया है? तो इसी का नाम बहिरात्मपना है। बहिरात्मा किसको कहते हैं? जो सदा बाहर बाहर रहता है वो बहिरात्मा, बाहर रहने वाला बहिरात्मा और भीड़ में भी अंतरंग में रहने वाला चिंतन करने वाला, मैं भीड़ से अलग हूँ, मैं अंतरंग में हूँ और ये भीड़ को मैं केवल जान रहा हूँ, ये अंतरात्मा। अंतरात्मा में जागृत रहने वाला अंतरात्मा, बहिर्विचारों में रहने वाला, बहिर बाहर में अटक करके रहने वाला बहिरात्मा। अंतरात्मा का चिंतन करने से आत्मा परमात्मा बनता है। बहिरात्मपने को त्यागो, अंतरात्मा अंतरात्मपने को धारण करो और परमात्मा को भजो। परमात्मा को भजते भजते स्वयं परमात्मा बन जाओ। अंतरात्मा ही परमात्मा बनता है, बहिरात्मा परमात्मा नहीं बनता। बहिरात्मा को तो पहले अंतरात्मा बनना पड़ेगा और अंतरात्मा फिर बहिरात्मा परमात्मा बनता है। जीवन जीने की मुख्य कला आज के दिन ध्यान में रखना है। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, कहीं भी रहो, भीड़ में रहो, अकेले में रहो, आप अकेले रहो। आत्मा को अकेला बनाना सीखो। बाहर के सब संबंध रहे, जुड़े रहे, सांसारिक संबंध है, ठीक, वहां जाना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है, संबंध रहते हैं, लेकिन अकेले बनकर के जाओ। मैं जहां जा रहा हूं अकेला जा रहा हूं, वो मेरे नहीं है। मैं जहां जा रहा हूं अकेला ही जा रहा हूं, वो मेरे नहीं है। मेरे हैं ये कहना केवल व्यवहार मात्र है, व्यवहार, निश्चय में वे कोई भी मेरे नहीं है। ये चिंतन भीड़ में आना चाहिए तो परीक्षा है कि आप अंतरात्मा हैं कि बहिरात्मा। आचार्य श्री के पास देखो कितनी भीड़ रहती है। इतनी भीड़ में तो स्वयं को भूल जाना चाहिए, खो जाना चाहिए, कैसे रहते होंगे, क्या विचार करते होंगे। वो भीतरी जो साधना है वो क्या है, ऐसा आप रहिए देखेंगे। भीड़ के बीच में रहो और इतना निश्चिंत रहो, निर्विकल्प निर्लेप रहो, भीड़ के बीच में रह करके भी आनंदित रहो, देखेंगे। ये नहीं हो पाता, परेशान हो जाएंगे, भाग जाएंगे, थोड़ा शांति। आचार्य श्री के सामने इतनी भीड़ रहती है कि उसके भीड़ में भी उधर ध्यान नहीं देती, वो अपने आप में रहती है, जैसे भगवान बैठे हैं। मंदिर का भगवान किसी को और देखते नहीं, कौन भक्त आया, इतना भी नहीं देती, इतना भी नहीं देखती। आ रहे हैं जा रहे हैं, वो उनके लिए आ रहे हैं जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो उनका धर्म है, उनके लिए आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए मेरा। वो केवल ज्ञान का आनंद ले रहे हैं, वो अनंत सुख की अनुभूति कर रहे हैं, अपने आप में मग्न है वो, और उसी सामग्री को पाने के लिए भक्त आ रहा है। वो खुद के लिए आ रहा है, भगवान के लिए नहीं आ रहा है। भगवान के पास जो है उसको लेने आ रहा है, दुकान आ रहा है, भगवान की दुकान में आ रहा है, भगवान से कुछ पाना चाहता है। भगवान जैसे आनंदित हैं, केवल ज्ञानी हैं, आनंद सुखी हैं, उसको कुछ शिक्षा लेकर के वैसा बन सकता हूं क्या, ऐसी कला सीखने के लिए मंदिर जा रहा है। भगवान के पास जा रहा है तो कला सीखने के लिए, आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखने जा रहा है। भगवान जैसे आनंदित हैं वैसे आनंदित होकर के मैं रह सकता हूं कि नहीं, ये कला सीखने जा रहा है। क्या भगवान को खुशी करने के लिए जा रहा है, भगवान खुश हो जाएं। भगवान को भक्त क्या खुश कर पाएगा, एक सेकंद भी भगवान कभी भक्त से खुश नहीं हो सकती। आपके आने से उनको न तो विषाद है न हर्ष है, हाँ कुछ भी नहीं है, ये तो मालूम है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। जाते हैं, क्यों जाते हैं? खुश करने के लिए। कितना अज्ञान, अज्ञान है देखो तो, उनको ही खुशी खुश करना चाहते हैं। वो इतने खुशी में, अनंत खुशी, जिनके खुशी के खुशी का अंत नहीं, अनंत खुशी है जिसमें, जिनमें, उनको हम खुश करने के लिए जा रहे हैं। यानी मतलब आकाश को हम जगह देने के लिए जा रहे हैं। इतने बड़े विशाल आकाश को रहने के लिए जगह देने जा रहे हैं। भगवान तो अनंत हैं, विराट हैं, उनको क्या खुश करोगे? उनके खुशी में आप डुबकी लगाने जा रहे हैं ये कहो? उनके जैसे खुश होने की कला हम सीखे, उनकी खुशी में हम डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, डुबकी लगा करके आए और घर में उस डुबकी के आनंद को 24 घंटे तक, जब तक हम सांसारिक क्रियाकलाप करते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हर्ष विषाद के माहौल में भी रहते हैं, तो उस खुशी को लेकर के हम जीवन जीने की कला सीखे इसलिए गए हैं। हम मंदिर जाते क्यों हैं? एक ही उद्देश्य, खुशी को थोड़ा सा लाना है वहां से, और उस खुशी को 24 घंटा बचाना है, दूसरे दिन तक खत्म ना हो, और फिर खत्म हो जाता है, दीपक बुझता 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 बुझ ही जाता है, फिर ले आओ दूसरे दिन, फिर मंदिर दर्शन करो, भगवान से कहो भगवान कर ले गया था, सब चला गया, बुझ गया, और कुछ दे दो खुशी। हम खुशी को लाने जाते हैं, खुश करने के लिए नहीं जाते, क्योंकि हमारे भगवान वीत राग है, उनको कोई राग द्वेष कषाय मद मत्सर अहंकार कुछ भी नहीं, निर्विकार निर्लेप निर्दोष आत्मा है वो। उस निर्दोष आत्मा का दर्शन करने हम उनके पास जाते हैं, निर्दोष बनने के लिए जाते हैं, उसी निर्दोषता को, कुछ निर्दोषता के उस अंश को अपने आत्मा में स्थापित करके लौटने के लिए हम गए हैं। ऐसे निर्दोष परमात्मा का दर्शन करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, अपनी आत्मा को भी वैसे ही खुश में रखने के लिए, अपनी आत्मा को उन्हीं के ज्ञान की तरह ज्ञानी बनाने के लिए, अपनी आत्मा को उनके जैसे आचरणवत आचरणवान बनाने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं। ऐसे भगवान सतत दृष्टि में रहना चाहिए। सतत दृष्टि में वीतरागी भगवान हो तो हम भगवान बनेंगे, और यदि सतत रागी देवता ही दृष्टि में हो तो रागी बनेंगे। उपास्य देवता जैसा रहेगा वैसा आप बनोगे, ये सिद्धांत है क्या? नहीं, जैसी संगति वैसी गति। रागी देवता की संगति करोगे तो रागी, वीतरागी देवता की संगति करो तो वीतरागी। आनंद किसमें है? राग में आनंद आएगा क्या वीतराग में? बस ये धर्म है, ये धर्म है। वृक्ष से वह सांप जरूर लिपता है। लिप्त क्यों होता है? उष्णता जब बढ़ जाती है वातावरण में, तो शांति पाने के लिए चंदन के वृक्ष के शरण में जाता है, उससे लपेटता है वो, अपने शरीर को लपेट करके जितने समय तक वो रहता है उतने समय तक वो चंदन का वृक्ष इसकी उष्णता को ग्रहण कर लेता है, और उष्णता डाउन हो जाती है तो वो चार्ज होता है शीतलता से, तो शीतलता को चार्ज करके लाने के लिए वो सर्प वहां जाता है। तो हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? हम राग द्वेष से तप्त हैं, संतप्त हैं, तप्त हैं, राग द्वेष कषाय करके, वो करो ये करो, ये झंझट वो झंझट, वो मर गए ये जन्म गए, वो गया ये चोरी हो गई, ये मकान गिर गया, कितने सारे झंझट में फंसे रहते हैं, राग द्वेष होता रहता है, शांति नहीं मिलती। शांति पाने के लिए तो हम मंदिर आते हैं, वो चंदन के वृक्ष के समान रहते हैं, हमारी दृष्टि उनसे लिप्त हो गई भगवान से, तो चार्ज कर लेता है, शांति को चार्ज कर लेता है और अशांति को डिस्चार्ज करके चला जाता है। इसलिए उपमा दी है चंदन वृक्ष और सर्प, सर्प जैसे चंदन वृक्ष से लिपट करके शीतलता को चार्ज करके और उष्णता को डिस्चार्ज करके चला जाता है। उसी प्रकार भगवान के पास, गुरुओं के पास सत्संग जब हम करते हैं तो हम डिस्चार्ज हो जाते हैं अपने राग द्वेष से और वीतरागता से चार्ज हो जाते हैं। वीतरागता में शांति है और राग द्वेष में अशांति है। राग द्वेष अधर्म है, वीतरागता धर्म है। वीतरागता में शीतलता है और राग द्वेष में उष्णता है। जब गुस्सा आता है तो देख लो कितनी उष्णता बढ़ती है, नाड़ी को पकड़ करके देख लो कितने बार उसके ठोके बढ़ते हैं कि नहीं। क्रोध के समय में ठोके बढ़ते हैं, कषाय करते समय ठोके बढ़ते हैं, चिंता करते समय ठोके बढ़ते हैं, डरते समय, भयभीत होते समय ठोके बढ़ते हैं। प्रशुद्धोपवास प्रतिमा।